समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल कर। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
नमस्कार मैम।
श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 और 2331444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज चलाएं, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट हो रही है और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है। आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू हुई
मई के महीने में
जी, आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी की ब्लास्ट होने के से लगी
जी।
उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है
जी। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए
जी। नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
जी।
और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
जी,
लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है।
प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब यह है कि जहां पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो, क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है। तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें अब एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
जी राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत।
नमस्कार जी निगम जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे एमसीडी है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
नमस्कार जी राकेश जी।
राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई है वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसे सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
अतुल जी ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
देखिए ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना तो 90 डिग्री का भी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी का भी कट ऑफ होगा नहीं
जी।
तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे जलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
हाँ नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीजों का रखरखाव रखना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो का लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबलाइजर्स आते हैं, एमसीबीज आते हैं, आरसीबीज आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि ये सारी चीजें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है। तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉकड्रिल की बात करते हैं, DFS दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉकड्रिल कंडक्ट करता है। तो मॉकड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि मॉकड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर होना है,
क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं, सबसे बड़ी।
हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
हाँ जी नमस्कार जी।
नमस्कार,
मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई, कहीं तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियां होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियां होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी, उस
धर्मवीर जी सवाल हम समझ गए,
सवाल यही कहना चाहूंगा,
हम समझ गए हैं प्रशांत
जी। लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए,
नहीं आप तीन सवाल पूछे जी।
नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
धन्यवाद
धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूंगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुंचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15-16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियां हैं, गाड़ियां पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
जी।
तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूंगा, ज्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस से लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहां हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज्यादा नुकसान हो गया
जी।
तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहां बिजली के प्लग होते हैं वहां हम देखते हैं साड़ियां भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है, बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
जी।
तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो है प्रिकॉशन ले, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो इंस्पेक्शन करेगी,
जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से जी। विजय जी नमस्कार।
हाँ, स्वागत है। दीदी नमस्ते।
नमस्कार सवाल।
हाँ, सर नमस्कार जी।
नमस्कार
जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील शिवहर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
जी।
नमस्कार विजय।
हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
हाँ विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप, तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद उसके बाद आपको अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमीडिएटली फोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, उसके बाद जितना हो सकते है जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती है, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहां जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
नमस्कार।
नमस्कार
जी, मैं श्रीकांत जाखड़ बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
जी।
तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मी के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो कभी पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो मतलब।
जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहां पे जो जलने वाली चीज है उसके आस पास में जो जलने वाली चीज है उसको वहां से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं तो एक तरह से वो सल्वेज का ही तरीका है, तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी, वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
लवली जी नमस्कार।
नमस्कार, सवाल पूछिए।
आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार
सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से गलती से और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
जी।
और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास आएगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज हम लोग कहीं कहते हैं ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला कोई गीला कपड़ा तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है और कोई बिजली का सामान कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
जी।
तो उसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर है, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं। तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिया, मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप अपने जो जहां भी फायर ब्रिगेड मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहां चिट्ठी लिखें, वहां से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे सारी महिलाओं को एनजीओ को भी यूज कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया
जाए? नहीं, नंबर जो सबका एक ही है 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूं कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो। और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
RWJ हो या कुछ भी हो,
हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
एक सवाल है पानीपत से, है ये शैलेंद्र शेंदुर का रहे हैं शायद, ये बोल रहे मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसी स्थिति में क्या कर सके। CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है, जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहां से निकल जाना है और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा, जितना हो सकता है आपको दूर अपने आप को करना है और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें यह है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहां जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं जी। प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह है या मतलब शटडाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताए। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर अगेल आप टेम्परेचर बताएं।
जी जी, हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए ये MCB LCB ELCB का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा मिनीचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात की, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
तो जी आप प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
नमस्कार।